ओम शांति। आदरणीय जयंती दीदी जी का शांतिवन निवासी भाई बहनों की भट्टी में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी के लिए हम कहेंगे कि आप चैतन्य फरिश्ता हैं, आपको टाइटल ही मिला हुआ है फ्लाइंग एंजल। सेवाओं के लिए आप पूरे विश्व में भ्रमण करते रहते हैं। दीदी को हमने बहुत ही एक्टिव, एक्यूरेट और अलर्ट देखा है, बाबा के बहुत आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार हैं आप। आपके लिए मैं कहूंगी, सबकी रूहों को महकाती क्षमा, मीठी मुस्कान से लाते सबके दिलों में बहार हैं, अटल, अचल, शीतल स्थिति सबको देते रूहानी प्यार हैं। आप यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका के सेंटर्स संभालते हैं और कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी आप संभालते हैं, जैसे यूएन के हैं, एनवायरमेंट और वुमेन से संबंधित और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो आप पूरे विश्व में इंटरनेशनल लेवल पर जो चलते हैं उसकी आप जिम्मेवारी देखते हैं। तो अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने की लगन का फाउंडेशन, इस विषय पर हम दीदी जी से सुनेंगे। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है फरिश्ता बनना, फरिश्ता सो देवता बनना। तो फरिश्ता बनने की सहज विधि क्या है और क्या हम पुरुषार्थ करें जो बाप समान फरिश्ता बनकर के अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचे, तो दीदी जी के अनुभव से सुनेंगे।
थैंक यू। ओम शांति। ये हॉल इस तरह से देखते, आप सभी को तपस्या के पोज में देखते बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो मालूम ही है कि लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही बटियां शुरू हुई, बाबा के कमरे में ही साइलेंस बटियां। परंतु इस प्रकार से छोटे छोटे ग्रुप्स में संगठित रूप में हम विशेष तपस्या करें, ये भी एक विशेष भाग्य होता। आप याद करो, जब आप छोटे थे, यदि किस बात के लिए आपको मन में लगन आती थी कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है, तो दिन रात, दिन में संकल्प और रात में स्वप्न उसी प्रकार से ही चलते थे। बाइसिकल चाहिए तो बुद्धि में वही तात लात लगी रहती थी, माँ बाप को भी ऐसे ही कहते रहते थे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। चांस नहीं छोड़ते थे माँ बाप को बताने के लिए कि आपके मन में किस बात की लगन है। या स्कूल में भी जब कुछ इम्तिहान आता था तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही धुन लगी रहती थी, इम्तिहान आ रहा, इम्तिहान आ रहा, और कोई बात सोचती ही नहीं थी, उसके लिए ही आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। 9 मास वैसे भी क्यों न बीत जाए, परंतु इम्तिहान के दिनों में बस उसी बात की ही लगन लगी रहती थी। तो इसी प्रकार से अब जबकि हम संगम युग के इतिहास को देखते हैं, तो मैंने तो पहले तो सोचा था कि बाबा सदा अंत तक रहेंगे साकार रूप में, अब अव्यक्त रूप में भी है परंतु साकार का और फीलिंग। और फिर बाबा के जाने के बाद बाबा ने जब 21 जनवरी 1969 पधरामणी हुई शिव बाबा की, बाबा ने बताया उस समय मैं ब्रह्मा बाबा को नहीं लेके आया हूँ साथ में, यदि मैं ले आता आप छुट्टी नहीं देते थे, तो मैं आज अकेला आया हूँ। परंतु कमांडर के रूप में जैसे कि पूरा ही हमको गाइडलाइंस दिया, और उस समय तो हमने नहीं सोचा था कि इतने वर्ष लग जाएंगे, 50 वर्ष से भी अधिक। परंतु उस समय जब बाबा ने कहा कि जब माँ बाप चले जाते तो बड़े भाई बहन सबको संभालते हैं, तो ठीक लग रहा था कि हाँ दादियाँ साथ में हैं, वो बहुत अच्छी तरह से संभालेंगे। परंतु अभी हमारे देखते देखते सब उठते अव्यस्त रूप में अब साथ है, परंतु अभी उनका एडवांस पार्टी में कुछ अलग ही कार्य चल रहा। तो संगम युग के दिन इतने सारे बीत गए और जिनों के लिए हमने सोचा यज्ञ के पिलर्स है, अभी बाकी 3 बचे हैं, बाकी तो और सब अव्यस्त। तो यज्ञ की सिचुएशन को देख करके मुझे ये लगता है कि संगम युग में बहुत ज्यादा समय नहीं चलने वाला है। आपको क्या लगता राइट? और फिर यज्ञ की सिचुएशन एक तरफ, विश्व की सिचुएशन दूसरी तरफ। बेशक विश्व युद्ध 2 चल चुके हैं 20th सेंचुरी में ही, परंतु ऐसे हालत जिसमें विश्व व्यापक बीमारी आए और सारे विश्व को लॉकडाउन एक छोटा सा वायरस करे और फिर आर्थिक समस्या बड़े से बड़े देशों से छोटे देशों तक सब तक सेम समस्या पहुंचे, ग्रह युद्ध की निशानियां अनेक खंडों में नजर आए, क्लाइमेट चेंज की आपदा सब तरफ वही देख रहे और फिर बाकी बड़े युद्ध की भी अच्छी तरह से तैयारियां नजर आ रही है। देशों का नाम मैं नहीं ले रही हूँ, परंतु आप लोगों को भी समाचार तो मालूम ही है कि किस तरह से सब बातें चल रही है। तो कहने का भाव की इम्तिहान के दिन चल रहे हैं, आने वाले हैं मैं ऐसे भी नहीं कहेंगी। ये पहले एक छोटा सा इम्तिहान आया है, तैयारी कहाँ तक हमारी है या नहीं है वो हमें दिखाने के लिए, लॉकडाउन में किस तरह से हमने इस समय का फायदा उठाया, किस तरह से हमने अपनी तैयारियां की या कहाँ तक हमने खुद को देखा कि बुद्धि कहाँ खींची हुई है, बुद्धि को किस प्रकार से लगन लगी हुई है, वो सब कुछ। जैसे कि मुझे लगता है कि बड़े इम्तिहान से पहले टेस्ट पेपर्स देती हैं अपने को देखने के लिए, मोस्टली तो वो खुद को देखने के लिए होते हैं। तो इस टेस्ट पेपर में भी हमें खुद को अपने को देखने के लिए बहुत अच्छा चांस रहा। तो अभी जो समय चल रहा है, अभी समय की यही पुकार है कि ब्राह्मण बन करके हमने अपनी जीवन बहुत ही श्रेष्ठ रीति से बिताई, और कोई जीवन इतनी श्रेष्ठ नहीं हो सकती जितनी ब्राह्मण योगी जीवन हमारी रही है। परंतु अभी ब्राह्मण जीवन के भी जो लक्ष्य है, फरिश्ता सुदेवता, अभी वो समय आया है जो हम बिल्कुल अपना 20 नाखून का जोर लगा करके अपनी ऐसे तैयारी करें जो वो स्थिति हमें अब अनुभव हो। क्योंकि यदि अब हम उस स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे और आगे लगता नहीं है कि कोई और कोई समय आने वाला है। और हाँ, अभी तक तो बेशक लॉकडाउन कुछ चेंजेस आई है, परंतु रियलिटी तो ये है कि कोई बहुत ज्यादा सेवा का स्वरूप जिसमें हम कहें कि जिस संख्या से लोग आते थे मधुबन, थोड़े भी आने लगे ये भी बड़ी बात। नेक्स्ट ईयर हम अंदाज लग रख सकते हैं कि कुछ थोड़े बहुत हजारों की संख्या में आएंगे, 25,000 का तो संभावना ही नहीं, परंतु 1,000, 2,000, देखो किस तरह से बातें चलती। तो मानो कि अभी से और भी समय मिलता रहेगा करीब दिसंबर तक, ये वर्ष मानो कि पूरा ही अपने लिए ही मिला है। आधा वर्ष तो बीत चुका, परंतु आधा वर्ष अभी तक है। कुछ कुछ लोग आएंगे मधुबन, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे जहां तक मैं समझती हूँ। और फिर जिस तरह से यहाँ सेवा की मशीन दिन रात चलती थी, उस प्रकार से तो नहीं, तो ये भी ड्रामा कहेंगे। बाबा ने हर बात पहले से ही बता दी कि आप अपने घर से सेंटर तक नहीं जा सकेंगे। साकार मूल्यों में ये बात बाबा ने बताई थी। अनेक बातें जो बाबा की सुनी हुई है वो हम प्रैक्टिकल अभी उसका स्वरूप देख रही हैं। और वैसे भी बड़े इम्तिहान से पहले बच्चों को टाइम भी मिला दिया जाता है रिविजन के लिए। यहाँ भी ऐसे ही होगा मैं समझती, विदेश में तो ऐसे होता है। बहुत इम्पोर्टेंट इंसान होता तो लास्ट तक पढ़ाई नहीं चलती, लास्ट में एक मास छह सप्ताह तैयारी करने का टाइम मिलता है। रिविजन खुद बैठ करके रिवाइज करो, जिस बात की जरूरत है उस बात पर अटेंशन दियो। तो ये हमें 3 मास तो मिल चुके, परंतु और भी आगे 6 मास मिलने वाले हैं करीब करीब। तो मुझे लगता है कि अब यदि हम वो मन में लगन रखते हैं कि मुझे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है, मुझे अपने अव्यक्त स्वरूप का अनुभव करना है, मुझे अपने कृष्णा रूप को धारण करके बाबा की सेवा में सहयोग देना है। मधुबन तो बेहद है हर बात में, तो सेवाएं भी बेहद चलती रही है। परंतु अभी नेक्स्ट फेज रिश्ता स्वरूप द्वारा सेवा चले, तो उसका आधार पहले तो ये निश्चय, बाबा में निश्चय है तब तो यहाँ बैठे हैं। ये भी निश्चय है कि हाँ हम देवता आत्मा, देवता घराने की आत्मा है, ये भी निश्चय है। तो आपने अपनी जीवन समर्पित की, परंतु मुझे अब अपना अव्यक्त स्वरूप अथवा एंजल रूप धारण करना है। न सिर्फ ये निश्चय हो कि हाँ मैं वो ही एंजल हूँ, परंतु वो लगन लगी रहे कि मुझे ऐसे ही बनना है, ऐसे ही बनना है। ब्रह्मा बाबा का लास्ट वर्ष जो चला, प्रैक्टिकल उसका अव्यक्त रूप नजर ही आता था। और हाँ, जो बाबा को अच्छी तरह से पहले से ही जानते थे वो बताते थे कि ये फर्क बाबा में नजर आ रहा। मैं पहले भी बाबा से मिली, परंतु इतना गहराई से न ज्ञान इतना बुद्धि में था, न इतना गहराई से तीसरा नेत्र खुला हुआ था जो मैं उस रीति से पहचानू। परंतु जो अंतिम वर्ष बाबा से मिली, बिल्कुल जून मास, फिर अक्टूबर मास, फिर दिसंबर मास 1968, जून मास में बाबा बहुत डिटेल में हमारी कहानी से पूछते रहे। भविष्य के गाइडेंस के लिए भी बाबा बहुत बातें बताते रहे। अक्टूबर मास बाबा का बहुत शांतमय स्वरूप, बहुत प्यार का स्वरूप, परंतु शांतमय स्थिति, और बाबा से मुलाकात भी शॉर्ट। बाबा मुरली चलाते थे, परंतु जो डायरेक्शंस देने होते थे बाबा शॉर्ट में देते रहे। फिर दिसंबर मास में मिली, तो सुनिए सचमुच बाबा बहुत प्यारा, परंतु साथ साथ न्यारा। अब हम सोचते हैं कि बाबा की तो कर्मातीत स्थिति वो हम नजर ही आती थी। तो बाबा खुद ट्रांस मैसेंजर से पूछते रहते थे बीच बीच में कि आप जो संपूर्ण बाबा को देखते हो वहां और बाबा को यहाँ देखते हो, बताओ कि क्या फर्क है, दोनों का अंतर क्या है। दादी गुलजार ने पहले साक्षात्कार किया था बाबा के अव्यक्त रूप का, और उस समय आप लोगों ने तो दादी के द्वारा खुद की ही अपनी कहानी सुनी हुई होंगी। विदेश में भी दादी ने बताई है कहानी, ऊपर विदेशियों को पांडव भवन में भी दादी ये कहानी सुनाई है, ज्ञान सरोवर में भी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अवश्य वो कहानी सुनी होगी। तो वो फरिश्ता स्वरूप लगता है यही बाबा है, परंतु लगता कुछ और है। ये कौन है, क्या है, फिर स्पष्टीकरण मिलता गया। परंतु उसके बाद बीच बीच में बाबा अवश्य ही ये पूछताछ करते रहे ट्रांस मैसेंजर से कि उस बाबा में और इस बाबा में कितना अंतर है। तो बाबा उस अंतर को मिटाने में लगे हुए थे, कितना भी कारोबार हो। और हाँ, सवेरे मुरली चलाना, शाम को मुरली चलाना, परंतु और जो मधुबन में आए उन सबको खुश करना, सारा कारोबार, परंतु साथ साथ ये अपनी लगन, मुझे इस अंतर को मिटाना है, मुझे अपने उस संपूर्ण अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है। तो आज हम खुद अपने से पूछे कि क्या मुझे ये विश्वास है कि जैसे बाबा ने बताया है कि हर ब्राह्मण बच्चे का चमकीला स्वरूप वतन में है, चमकीला ड्रेस बाबा कहते थे, लाइट का फरिश्ता स्वरूप हमारा ही वहां पर है, परंतु उस संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप और इस रूप में अंतर क्या है। एक तो पहले मुझे ये विश्वास हो, ये निश्चय हो कि हाँ हमारा स्वरूप वहां है, और दूसरा कि मुझे ही फिर से वो बनना है। और अभी मुझे क्या करना है, वो बुद्धि में ध्यान में रखना है। साकार मूल्यों में बाबा कहती हैं, 84 जन्मों का चक्कर, वो चक्कर फिराने से आपको राजाई पद प्राप्त होगा। और बाबा कहते कि बाप और वर्षे को सामने रखो और उसको याद करो, ताकि फिर वो क्वालिफिकेशंस राजाई पद के फिर से जागृत हो देवता स्वरूप के। और आज बाबा हमें कई बारी ये याद दिलाते रहे हैं कि अब समय है अपने मनसा सेवा करने का, अथवा अपनी फरिश्ते रूप को धारण करके सेवा करने का। तो जब मुझे मन में ये आता है कि मुझे ऐसे पुरुषार्थ जल्दी जल्दी करना है जो मैं वो अपना फरिश्ता स्वरूप अनुभव कर सकूं, तो फिर हम उस अंतर को मिटाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। और जो ट्रांस मैसेंजर्स बाबा को बताते थे अंतर का, तो मेन बात बाबा को क्या कहते थे, बाबा उस स्वरूप और इस रूप में लाइट का फर्क है, वो स्वरूप है बिल्कुल लाइट का। और यहाँ बाबा का बहुत प्यार का स्वरूप है, परंतु वो लाइट का स्वरूप कुछ अलग है। तो आप सोचो कि दो बातों से वो लाइट का स्वरूप बनता, एक तो पवित्रता की शक्ति और दूसरा सत्यता की शक्ति। तो यदि हमें मन में ये भावना है कि मुझे अपना वो स्वरूप धारण करना है, तो जैसे पवित्रता होती, जहां पवित्रता है वहां एक चमक होती। साकार रूप में भी आप देखेंगे फिजिकल, जहां सफाई है वहां पर उस स्वच्छता में जैसे कि एक रौनक होती है, एक चमक होती। साधारण रीति से आप क्लीन करो तो वो कोई रौनक नहीं होती, परंतु अच्छी तरह से आपने बहुत अच्छा सफाई की है तो एक वो चमक आ जाती है। तो वो इतनी उसके अंदर वो स्पार्क, वो शुद्धता। तो पवित्रता का स्वरूप हमारा जैसे बनता जाता, वो लाइट औरों को भी नजर आती रहेंगी, हमको खुद भी अपने आप से वो फीलिंग होगी कि ये हड्डी मांस नहीं, परंतु एक जैसे कि बाबा ने मुझे एक लाइट का स्वरूप दे दिया है। आप इस बात का एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ बैठे हैं, अब चलते हैं वतन में, घर में, और वहां पर बस साकार श्री यहाँ छोड़ा, बुद्धि योग को वहां लेके गए, और वहां बिल्कुल नए आत्मा ज्योति स्वरूप परम धाम में अपनी निज स्वरूप में उस पवित्रता शुद्ध स्वरूप में मैं वहां हूँ। और फिर वहां से आप थोड़ा सा नीचे आओ वतन, सूक्ष्म वतन में, और वहां पर आपका चमकीला ड्रेस तैयार है, आप वो पहन लो। सृष्टि रूप में और इस रूप में न सिर्फ लाइट का फर्क, परंतु यहाँ तो हड्डी मांस और वहां पर हड्डी मांस नहीं। तो आप सोचो कि यहाँ से हम साकार दुनिया से यात्रा करते हैं बुद्धि योग बल से, जान है, जीवन है, कोई चले नहीं गए हैं, परंतु ये कॉन्शियसनेस की बात कि बुद्धि को हमने इस स्थूल वतन स्थूल शरीर से पार लेकर के हम वहाँ परम धाम का अनुभव करती हैं। और वहाँ परम धाम से फिर जब हम नीचे आते हैं तो फिर हमें वो प्रकाश का स्वरूप, चमकीला स्वरूप हम पहन सकते जिसमें हड्डी मांस नहीं है। तो लाइट ही लाइट है, प्योरिटी ही प्योरिटी। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अभी हमें किस प्रकार से पुरुषार्थ करना होगा? जितना जितना हम देह भान से अपने को दूर रखते हैं, देही स्थिति बनाते हैं, काम काज करते भी देही स्थिति, परंतु जब चांस मिले योग में बैठ करके इस शरीर से पार वो विधि स्थिति का हम अनुभव करें, जितना हमने उस बात का अभ्यास किया होगा उतना सहज ही हम अपना वो चमकीला स्वरूप धारण कर सकेंगे। और फिर उस लाइट स्वरूप को आप यहाँ ले आ सकते हैं। अभी आत्मा तो है ही इसमें, परंतु उसका अनुभव करके हम यहाँ आकर के ऐसे ही फील कर सकते हैं कि हमने वो लाइट का स्वरूप धारण किया है। तो जो हम कारोबार करेंगे, जो हम काम काज करेंगे, उसमें हमें थकान नहीं होगी, उसमें हमें कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी, बिल्कुल वो लाइट के स्वरूप के द्वारा कार्य चल रहा है। तो जितना बार जितना समय ये अभ्यास चलता रहेगा उतना समय जल्दी जल्दी हम अपने अव्यक्त स्वरूप अथवा फरिश्ते रूप को धारण करके बाबा की मददगार सेवा में उस तरह से हम कर पाएंगे। यहाँ से सीधा आप सूक्ष्म वतन में जाओ थोड़ा कठिन है, इसको छोड़ के आप परम धाम जाओ फिर आप नीचे आओ वो ज्यादा सहज है। तो इस बात का आप ट्रायल करके देखेंगे तो आपको खुद भी पता चलेगा कि वो प्योरिटी का स्वरूप जो है सूक्ष्म वतन में और सत्यता उस स्वरूप द्वारा कैसे चमक रही है। वैसे भी सच्चाई सफाई दोनों शब्द कई बार आते हैं, और सच्चाई तो ठीक है परंतु सफाई इतना क्लीन, इतनी प्योरिटी, तो दोनों बातों से वो लाइट का प्रकाश स्वरूप हमारा बना हुआ है। पांच तत्व इस दुनिया के होते हैं, एंजल का रूप पांच तत्वों का बनाया हुआ नहीं है, एंजल का रूप प्योरिटी और सत्यता का रूप है। जैसे आत्मा के लिए हम कहते हैं ना कि आत्मा क्या चीज है, आत्मा किस चीज से बनी हुई है, तो ये दो चीजें शरीर का बनावट है, परंतु आत्मा की बनावट, हाँ हम कहेंगे ज्योति बिंदु है, परंतु साथ साथ हम ये कहेंगे कि ये पांच तत्व, परंतु आत्मा पांच गुणों का पिंड, शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और आनंद, इन चीजों से आत्मा बनी हुई है, जिस कारण से फिर से योग लगा करके उस आदि स्वरूप को हम जागृत करती हैं। तो फरिश्ता कैसे बना हुआ है? प्योरिटी और सत्यता, जिस कारण से फरिश्तों के लिए कहेंगे कि वो रक्षक है, भगवान सुप्रीम रक्षक है, ये सही बात, परंतु मानव यहाँ भगवान वहां, तो बीच में फरिश्ते हैं, मैसेंजर्स, यहाँ का संदेश वहां पहुंचाए और वहां का संदेश यहाँ पहुंचाए, मैसेंजर दोनों तरफ का काम करता, परंतु यहाँ का संदेश बाबा तक पहुंचाए जरूरत नहीं है, बाबा हमारे से ज्यादा जानते हैं हर एक के मन की भावनाएं क्या है, इस संसार की हालत अब क्या है, बाबा पहले भी जानते थे और अभी तो बहुत अच्छी तरह से देख भी रहे हैं, परंतु उनका संदेश यहाँ तक पहुंचाए वो हमारा काम है, और भगवान तक लोग नहीं पहुंच सकते हैं, एंजल्स तक तो पहुंच सकते हैं सहज, क्योंकि उनका स्वरूप कुछ मानवता के नजदीक है, जैसे कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि शिव बाबा को याद करना लोगों को इतना कठिन क्यों लगता, क्योंकि ये एक नई बात है, खुद को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना, परंतु एंजल्स तो उनका तो स्वरूप नजर आता, बहुत सुंदर अट्रैक्शन वाला स्वरूप है, तो मानव के लिए एंजल के साथ कम्युनिकेट करना और वो जो मैसेज ले आ रहे हैं मानव के लिए वो स्वीकार करना थोड़ा सहज होता, परंतु एंजल्स किस भाषा में बोलते हैं? परमधाम में तो देखो कोई वाइब्रेशन भी नहीं, कोई आवाज नहीं, सूक्ष्म वतन में मूवी, आवाज नहीं परंतु मूवी से कारोबार चलती, तो जब यहां भी हम पवित्रता और सत्यता इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे तो ये स्थूल भान इस शरीर का वो छूटता जाएगा और हम अपना आकारी स्वरूप को लाइट का स्वरूप धारण करके कारोबार में व्यवहार में आ सकेंगे, परंतु एंजल का कारोबार कैसे चलता? इशारों द्वारा, शब्दों द्वारा नहीं। तो हम ये अभ्यास करें, चार दिन के लिए तो सिद्धि सहज है, कुछ ड्यूटीज नहीं है, जहां तक मैं समझती हूँ आप सबको ड्यूटीज से फ्री कर लिया है ना, इसकी ड्यूटी तो नहीं है ना इस प्रकाश से, राइट? तो अभी तो ड्यूटी नहीं है, तो साइलेंस का अभ्यास करना सहज है, मूवी से चलना भी सहज है, परंतु ये चार दिन का अनुभव फिर आप वहां भी ले जाएं, अपनी डिपार्टमेंट में, अपनी ड्यूटी में, और आप इसी प्रकाश से ध्यान रखें कि जितना हो सके कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, तो वो जो कम बोलने की बात है, धीरे बोलने की बात है, वो बढ़ती जाएंगी, बढ़ती बढ़ती जाएंगी, ताकि वो स्टेज आएंगी जिसमें एक दो को इतना समझ गए हैं, एक दो की इतनी समीपता का संबंध है, जो इशारा दो और दूसरा व्यक्ति समझ जाए, वो कुछ इशारा करे आपको समझ में आ जाए और कारोबार साइलेंस में चले। मुझे लगता है कि वो दिन नजदीक है जबकि हम इतना अभी से ही इस बात का ट्रायल करते रहेंगे कि हम कितना कम बोलें, और आप देखेंगे कि जितना कम बोलना होता उतना समय बचता है। दादी गुलजार बहुत अच्छे अच्छे अनुभव शुरू में सुनाती थी, और खास ये बात एक बारी सुनाई थी कि कराची के दिनों में ऑलमाइटी बाबा, ऐसे कहते थे ऑलमाइटी बाबा, तो ऑलमाइटी बाबा हम लोगों को एक सप्ताह, 10 दिन, 1 मास के लिए साइलेंस के लिए खास इंस्ट्रक्शंस देते थे, और उसमें हम लोग फिर अपनी बट्टी का टाइम, अपने योग तपस्या का टाइम हम देखते थे बहुत मिल गया, क्योंकि जो कारोबार भी करो, बातचीत करते कारोबार करो, उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता, साइलेंस में कारोबार करो उसमें टाइम बच जाता। तो दादी गुलजार बताती थी कि जब जब कुछ नया राज बाबा को हमें बताना होता था तो बाबा हमें इंस्ट्रक्शन दे देते थे, 15 दिन शांति का व्रत, मौन व्रत। तो उसमें कहती थी कि हम लोगों को योग करने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता था, और आप सोचो उस समय का योग और आज का योग तो बहुत ही अंतर, क्योंकि उस समय इतनी कोई बातें स्पष्ट नहीं थी। आत्मा ज्योति बिंदु है, शिव बाबा ज्योति बिंदु है, ये तो बिल्कुल पता ही नहीं था। हाँ मैं आत्मा हूँ ये मालूम था, हाँ परमात्मा है ये मालूम था, परंतु परमात्मा भी ज्योति बिंदु है नहीं मालूम था। परंतु वो बड़ी मस्ती से योग में बैठते थे, किसको याद करते थे, आज भी आप दादियों से पूछो किसको याद करते हो तो कहेंगे बाबा। कौन सा बाबा, तो आपके प्रश्न को वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए दोनों बाबा एक ही है, वो बाबा और ये बाबा दोनों कच्चे ही है। तो उस समय तो उनको वही बाबा सामने होता था, परंतु इतने घंटे योग जिस कार्य से ही फिर बुद्धि उनकी ऐसे खुलती गई, जो विश्व भर में जिन बातों का जानकारी नहीं थी इन्हों को वो जानकारी भी प्राप्त होती गई, संसार की बातों की भी और ज्ञान की बातों की भी। तो कहने का मतलब यदि हम ये अभ्यास करें, जितना साइलेंस में रहें इस पट्टी में तो ठीक है, परंतु वैसे भी जितना साइलेंस में रहें उतना हमें समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा योग लगाने का। और जितना मनुष्यों की बातें आप सुनो, बुद्धि जरूर उन बातों पर मनन चिंतन करती ही है, जिसकी बात मैंने सुनी वो दिमाग में बैठ गई और कुछ चिंतन चला, फिर तो मैं दूसरे के साथ उस बात का वर्णन करती हूँ। यदि दिमाग से वो निकल गई, एक कान में गई दूसरे से निकल गई, तो वो दिमागी खाली तो मैं किसी को थोड़ी सुनाएंगी कि उसने ये कहा, ये हुआ, तभी ऐसे हुआ, वो बातें फिनिश। तो यदि अभी भी हम इस प्रकार से प्रैक्टिस करें, मुझे लगता है कि उस साइलेंस की शक्ति से, जो अंदर साइलेंस की शक्ति है, वो हमारी बढ़ सकती है। वैसे तो आप सोचो कि साइलेंस की शक्ति तो योग द्वारा को ही हम कहेंगे, परंतु मुख का भी साइलेंस वो भी एक शक्ति होगी, जिससे हमारी इंटरनल साइलेंस की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। दादी जानकी को तो आप जानते हैं, वो एक एक बात को बहुत गहराई से विचार करके स्पष्ट करती थी। तो बहुत समय पहले दादी ने ये स्पष्ट किया था कि 3 प्रकार की स्टेजेस, पहली स्टेज देही अभिमानी, देही अभिमानी स्टेज उसको कहेंगे जिसमें कर्म इंद्रिय कोई भी मुझे न खींचे, इन सब बातों से पार अभी भी यदि जीव रस है, मीन्स अभी तक देह के भान में हम हैं। मधुबन की विशेषता है कि बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनती है, तो आप लोगों के लिए ज्यादा ये टेस्ट आती है। जहाँ दो बहनें रहती और सब्जी रोटी बनाती, दाल चावल बनाती, वो तो सुनकर बातें होती, तो उनों के सामने इतनी टेस्ट ये नहीं आती। परंतु ये भी अच्छी बात कि जब चीज हो हम प्यार से स्वीकार करें, और जब चीज ना हो तो भी हम उसी मौज उसी मस्ती में रहें। अभी मैंने देखा कि दो चीजें स्टॉक में हैं, पेठा और आलू, लौकी तीसरी चीज, परंतु तब प्यार से खा रहे हैं, प्यार से चल रहे हैं। कोई भी आवाज में नहीं आता कि ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। अच्छी बात है, कर्म इंद्रिया जीव। तो ये तो एक कर्म इंद्रिय की बात बताई जीव की, परंतु हर बात का हम प्रैक्टिस करें। और उसमें भी दो मुख्य बातें आती है जिस कारण से हमें पता चलता कि अभी तक देहभान है। एक तो पसंदी, ये पसंद है ये नापसंद है। आज हम कोई वस्तु के लिए कहेंगे पसंद है नापसंद है, कल हम व्यक्ति के लिए कहेंगे पसंद है नापसंद है। परंतु दोनों बातों से आत्मा न्यारी, और न वस्तु न खाना पीना न व्यक्ति, पसंदी से दूर, तो उस स्टेज को कहेंगे देही अभिमानी कर्म इंद्रिय जीत। दूसरा, जब देहभान का कुछ अभी तक रहा हुआ है, उसमें हम ये शब्द कहेंगे मैं राइट हूं, मैं जानता हूं ना, मुझे अनुभव है ना इस बात का, आप क्यों नहीं मेरी बात मानते हो, मुझे तो मालूम है ना मैं राइट हूं। तो जो व्यक्ति ऐसे कहता है, क्या पता चलता, देहभान, देही अभिमानी स्थिति में ये शब्द कभी नहीं निकलेंगे, मैं राइट हूं। हाँ, आप भी राइट हैं, वो हो सकता है कि मैं भी राइट हूं, परंतु मैं अपना फोर्स चलाऊं कि मैं राइट हूं, ये देही अभिमानी स्थिति की निशानी नहीं। तो मैं पन ये ईगो, और मैं राइट हूं ये तो महा ईगो। तो यदि ये दो बातें अभी तक है, मीन्स अव्यक्त स्थिति तो बहुत दूर है। और फिर नेक्स्ट स्टेज अशरीरी, शरीर है परंतु मैं डिटैच होकर के शरीर को देख सकती हूँ, ये शरीर अपना काम कर रहा है, और मुझ आत्मा को डिटैच होकर के देखना है। जितना जितना इस प्रकार से अशरीरीपन की स्थिति हम धारण करते हैं, जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कई बार देती हैं कि सरस अपनी पुरानी खाल छोड़ देता, परंतु वो तो छोड़ देता तो नहीं आ जाती, और वो तो पुरानी तो फिर जो कुछ भी होगा हो जाता। यहाँ पर जीते जी मरने में एक सेकंड में मुझे शरीर में आना है, कुछ कार्य करना है, डिटैच होकर के देखना है, फिर मुझे इसी शरीर के द्वारा कारोबार में आना है। तो आना और जाना, अब शरीर में है परंतु निमित मात्र, अशरीरी होकर के देख रही हैं कि ये शरीर द्वारा बाबा क्या करा रही हैं, क्या करानी चाहती हैं। तो जितना हमारा इजीनेस होगा, लाइटनेस होगा, अब देख रही हैं अब इसमें हाजिर होकर के कार्य कर रहे हैं। तो इस अभ्यास से जब भी कोई बीमारी होती, सहज हम उस बीमारी को पार कर सकेंगे। आप सोचो कि हर दादी ने कितनी बीमारियां देखी, और मम्मा के पास जब बीमारी आई तो कोई भी अफसोस करता था मम्मा को कि मम्मा ये तो बहुत मुश्किल बात आई है आपके लिए। मम्मा हंसते हंसते उनको कहती थी, अच्छा है कि बीमारी अब भी आई, फिर भी अभी हिसाब किताब चुप भी कर सकते, पीछे तक रुक जाए, पीछे तक आए फिर तो वो बात ठीक नहीं है, अब भी ही आ जाए और अब भी ही चुप्पू हो जाए हिसाब किताब। तो हर दादी के मन में यही भावना कि बीमारी आई है कोई हर्जा नहीं है, अब भी ही यहाँ ही चुप्पू हो जाए, पीछे न धर्मराज के सामने रुकना पड़े। तो उन्होंने इस प्रकार का अभ्यास किया हुआ था, शरीर और शरीर। अब मैं शरीर द्वारा कुछ काम कर रही हूँ, परंतु जब मैं चाहूँ डिटैच अशरीरी, और मैं बिल्कुल शरीर को अलग देखूँ। तो बाबा ने कई बार हमें बताया है कि आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करो, परंतु कभी कभी करते कभी कभी मिस हो जाता, परंतु चाहे बट्टी में चाहे बट्टी के बाद भी आप इस प्रकार से अभ्यास करो अशरीरीपन की स्थिति का। और तीसरी स्टेज विधेही, भगवान के लिए गायन आता है कि वो विधेही है, और बाबा के बच्चों के लिए भी शरीर यहाँ बैठा है, मैं परम धाम में बाबा के साथ बैठी हूँ, देहे देहे की दुनिया यहाँ, अपना बुद्धि योग वहाँ, और बुद्धि की स्थिति विधेही, कोई देह का इस समय कनेक्शन ही नहीं, जरूरत ही नहीं। तो जितना हम अपनी विधेही स्टेज का भी अभ्यास करेंगे, बिल्कुल मैं ऊपर में बैठी हूँ बीज रूप स्थिति में, तो जो बाबा बीज रूप स्थिति का योग कर कहते हैं, जिस योग की स्थिति में विक्रम विनाश होते। आप सोचो किसको 10 साल हुए हैं ज्ञान में चलते, 20 साल 30 साल, शायद कोई 40 वर्ष का भी बैठा होगा, परंतु अभी भी कुछ कुछ हम कहेंगे हमारे संस्कार ऐसे हैं जो जाते नहीं, कारण कि अभी तक वो योग तपस्या नहीं की है जिसमें संस्कारों का परिवर्तन हो सके। जिसको बाबा कहते थे बीज रूप स्थिति में आपके विक्रम विनाश होंगे, साकार मूल्यों में ये बाबा के महावाक्य सुनते हैं। तो वो बीज रूप स्थिति विधेही स्थिति जिसमें बाबा साथ है, बाबा के अनुभव में हम लीन है, उस योग अज्ञ की स्टेज में विक्रम विनाश होते हैं, और उसका प्रूफ संस्कार परिवर्तन। तो यदि हम कर्म इंद्रिय जीत स्टेज, फिर उसके बाद विक्रमा जीत, विक्रम कोई न हो, फिर उसके बाद प्रकृति जीत, कोई प्रकृति हमें न खींचे, फिर उसके बाद माया जीत, कोई प्रकार का माया का संकल्प न आए, तो हम अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते, तो हम अपना अव्यक्त स्वरूप सृष्टा रूप को धारण कर सकते। तो ये जो आत्म स्मृति की 3 स्टेजेस है बिल्कुल अलग अलग, इन बातों पर हम अभ्यास करें एक एक स्टेज पर। तो हमें पता चलेगा कि कहाँ तक हम बिल्कुल एक टिक बीज रूप स्थिति में रह सकते, और फिर जब कर्मातीत स्थिति हमारी बहुत क्लियर अनुभव की हो रही है तो दृष्टा रूप तो सामने है ही। बाबा ने ये सब बातें हमें स्पष्ट करके बताई है, परंतु जब ऐसे बठी का मौका मिलता तो बातें फिर से बुद्धि में रिवाइज कर सकते और फिर उन बातों का ध्यान रख करके अनुभव कर सकते। परंतु इस बठी का इस वर्ष का ये फर्क कि इसके बाद भी आप लोगों को फ्री टाइम होगा, और उस फ्री टाइम में आप ये बातों का जो अभ्यास चालू किया है उसको आप और आगे बढ़ा सकेंगे, ताकि फिर वो स्थिति आपकी पक्की हो जाए, आपके जीवन में आ जाए, तो फिर जो बाबा चाहते हैं सृष्टि स्वरूप से सेवा हो फास्ट। क्यों? क्योंकि जो बाबा कहते हैं ना कि क्या आपको भक्तों के दुख दर्द का आवाज नहीं पहुंच रहा है, तो अभी तो रियलिटी है, इमेजिनेशन नहीं है कि लोग कितने दुखी हैं, कितने हैरान हैं। तो अभी तो लोगों ने देखा भी है कैसे लोग हैं, कैसे हैरान हो रहे हैं। तो जितना जितना थोड़ा समय, ज्यादा समय प्रैक्टिस से ज्यादा समय बढ़ सकता है, सृष्टि स्वरूप से बाबा के साथ हम वो सेवा करें जिसके साथ प्यार होता हम चाहते हैं उसके साथ ही हम अपना समय बिताएं। कितने भी लोग होंगे परंतु जिसके साथ प्यार होगा कहेंगे उसके साथ बैठूं, उसके साथ खाना खाऊं, उसके साथ घूमूं, उसके साथ पैदल चलूं। तो बाबा के साथ प्यार है तो हमारी लगन में यही अनुभव की बात है कि अब मन चाहता है कि बाबा के संगी बैठे, बाबा के संगी पैदल करे, बाबा को साथी बना करके सब कुछ करे। परंतु एक बाबा तो निराकार और दूसरा बाबा अव्यक्त, तो यदि हम लोग यहाँ होंगे तो वो अनुभव नहीं हो पाएगा। परंतु इसका त्याग करके हमने प्रैक्टिस की हुई है, ऊपर जाए फिर अपना अव्यक्त स्वरूप धारण किया, फिर हम बाबा के साथ उस रिश्ते रूप में वो अनुभव खुद के लिए भी कर सकेंगे जिससे हमें वो आनंद का अनुभव हो, और फिर बाबा के साथ जहाँ पर बाबा सेवा पर लेके जाए हम उस सेवा पर हाजिर होंगे। दादी को हमने देखा कि तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट में है, परंतु रेस्ट में भी उसके चेहरे से लगता था कि सेवाएं हो रही है और दादी बहुत खुश है। तो बाद में हम पूछते थे दादी आप कहाँ गए, तो कहती थी कि मैं बाबा के साथ सेवा पर गई, कहाँ लेके गए वो नहीं मालूम, परंतु बाबा के साथ ही थी और बाबा सेवा करा रहे थे। तो साकार होते भी जिसके साथ प्यार है, बुद्धि योग उसके साथ है, तो बाबा के साथ सेवा पर जा सकते। तो दिन भर भी आप जा सकते, रात्रि के समय भी बाबा के साथ आप घूम सकते, परंतु अभी समय है रिश्ता रूप धारण करें। और मुझे लगता है कि जितना अपना अभ्यास होगा उस रूप को धारण करने का, उतना न सिर्फ सेवा के लिए फायदा परंतु हमारी खुद के लिए रक्षा होंगी। क्योंकि जो यहाँ पर सीन्स और आगे चलने वाली है बहुत दुख की, उनको देख करके भी हम सहन कर सके सहज नहीं होगा, परंतु आप अपने दृष्टि स्वरूप में है तो आपको कुछ वो सीन इम्पैक्ट नहीं करेंगी, बाहर की बात अंदर नहीं आएंगी। जो अंदर की आपकी सत्यता और पवित्रता की बात है वो उनको इम्पैक्ट करेंगे। तो रिश्ते रूप में न सिर्फ सेवा और और आत्माओं की रक्षा परंतु खुद की भी रक्षा इसी स्थिति से हुई। तो शाम का योग विशेष ही होता है। मुझे विश्वास है कि आपका और ही अभी वैसे भी कहती हैं कि निर्मल शाम रिश्ते सृष्टि पर चक्कर लगाती हैं, प्रकर्मा देती हैं। तो आप शाम के योग में ऐसे ही अनुभव करना कि बाबा के साथ हम प्रकर्मा दे रहे हैं, विश्व को हम भगवान की तरफ से शांति पवित्रता सत्यता की किरणें दे रही हैं। एंजॉय करना। ओम शांति।